और इसके बरक्स वमन जा बिस्सैयती, और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे? यानी अल्लाह कहते कोई जुल्म नहीं मैंने किया, जहन्नुम में डालने के बाद मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया, पहचान करवा दी थी, तुम्हें IQ दिया, तुम्हें इंटेलिजेंट बनाया, तुम्हारी अक्ल खोल दी, तौबा का दरवाज़ा सारी ज़िंदगी खोला रखा कि अभी आते हो अभी आते हो, कभी ताना नहीं दिया कि 900 चूहे खा के आए हो या 1,000 खा के आए हो। रहमान था मैं, कोई कहार नहीं था। इसके बावजूद जब तुमने कदर नहीं की तो जाओ आज फकुब्बत वजूह हो हम। कुब्बत का लफ्ज़ उर्दू में कभी सुना? कुबड़ा है फलां, फलां कुब्बा है, टेढ़े शख्स को कहते हैं ना कुब्बत। कहते हैं किसी को, यहाँ से आप तस्वर में लाए, एक शख्स खड़ा है ना, पीछे से जाके आप उसको धक्का दे सर के बल के, वो जाके घुटनों के बल गिरे। ऐसा लग रहा है जहन्नुम का दरवाज़ा खोल के फेंको इनको, फेंको इनको। ये कैफियत है कुब्बत वजूहहुम। ये आग, ये नाक और ये पेशानी थी ना जिसको इज्जत बनाई हुई थी, अल्लाह कहता है सबसे पहले गिरोगे ना तो इसको चोट लगेगी जहन्नुम में जाकर, कि जाओ हल तुझसो न इल्ला मा कुंतुम तामलूम। आप देखिए कि इससे ज्यादा भी बदकिस्मती होगी किसी की कि इतने बड़े रहमान के सामने उसको ये बात कही जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस रुसवाई से बचा ले। इन्नमा उमिरतु अन आबुदा रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लती बल्दतिल्लसी हर्रमहा। यहाँ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहलाया जा रहा है। सारी जिंदगी लोगों को तौहीद का दर्स देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, कहे नबी इनसे कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि इस शहर मक्का के रब की बंदगी करूं जिसने इसे हरम बनाया और जो हर चीज़ का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। कोई मेथडोलॉजी आपको नबी सल्लम की मुख्तलिफ दिख रही है इससे कि खुद बंदे बनो, मुस्लिम रहो और लोगों को कुरान की तालीम दो? खुशकिस्मत हैं वो लोग। देखिए मेरे पे लेके ना बात कीजिएगा क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, लेकिन अल्लाह के नबी की इतनी खूबसूरत हदीस है, कुल्लु दुनिया मलूनतुन, हर दुनिया की चीज़ रहमत से दूर है। लफ्ज़ लानत बोलूँगी तो बस लोगों को मुश्किल लगेगा, है लफ्ज़ लानत, मलूना अरबी का भी लफ्ज़ है। हर चीज़ पर अल्लाह की लानत उतर रही है, मुराद है कि वो अल्लाह की रहमत से दूर है, ये मुराद है। इल्ला मिन सला, तीन लोगों के सिवा हर बंदा अल्लाह की रहमत से दूर है। अल आलिम वल मुतअल्लिमु मम वला हु, इल्म सीखने वाला, इल्म सिखाने वाला और उसके ऊपर खर्च करने वाले, उनकी विलायत करने वाले। अब आप इस एंगल से लेके देखिए तो अल्लाह के नबी का ये मनहज कितना क्लियर है। हम कितना समझते हैं इन चीज़ों को कि हम कहते हैं मौलवी साहब, ये मौलवी साहब, ये मुल्ला, ये मस्जिद वाले का नहीं। अब जो हिदायत इख्तियार करेगा अपने ही भले के लिए इख्तियार करेगा, और जो गुमराह हो इससे कह दो कि मैं तो बस एक खबरदार कर देने वाला हूँ। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अन करीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा जिनको तुम पहचान लोगे, तेरा रब खबर नहीं है उन आमाल से जो तुम लोग करते हो। धमकियों वाली सूरत लगी है, ऐसे लग रहा था जैसे भिगो भिगो के किसी को मारा जा रहा है। खूब मजे कर लो, मस्ती करो। अब यहाँ देखिए, अगर हमने पारे के थीम में शिर्क रखा था तो जो मुझे बात समझ आई है वो यही है कि इस सूरत का जो इतना हिस्सा हमने यहाँ पढ़ा है, इसमें दुनियादारी का शिर्क है, अल्लाह की किताब को छोड़ने का शिर्क है, इल्म के मुकाबले में जहालत का शिर्क है, अपने लाइफस्टाइल को अपनी मर्जी का रखने का शिर्क है। अब हम चल रहे हैं सूरत कसस पे, थोड़ा सा इसकी वजाहत भी कर देती हूँ। कसस का मतलब होता है किस्सा, कहानी। इस सूरत में तरतीब के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरा है। सीरत नबवी में जैसे हम नबी सल्लम की ज़िंदगी पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको मूसा की सीरा पढ़नी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कसस में वो सारे वाक़यात पीछे आपने बीसियों बार सुने हैं अभी, लेकिन इसमें तरतीब उसकी सामने आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस सूरत के बुनियादी थीम में आपको ये बात दिखेगी कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। चार औरतों का तذकरा है इस सूरत में, माँ, बहन, बेटी, बीवी, और किस तरह उन्होंने इन सारी चीज़ों को रखा। इसी तरह इस सूरत में आपको चार बड़े शिर्क दिखेंगे, सियासी शिर्क, मजहबी शिर्क, बेदीनी का शिर्क, और इसी तरह से कि लोगों के अफकार के ऊपर गैर इस्लामी चीज़ों का शिर्क। हम जहाँ बात आएगी वहाँ करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह लोग सियासत के नाम पे भी खुदा बन जाते हैं बाज़ औक़ात जब उनके पास दीन नहीं होता, और इसी तरह जब दौलत आती है तो उसका बतर और दिखावा करते हैं। इस सूरत में बतर की बहुत बात आएगी, जो भी शिर्क की एक किस्म है, और इंशाल्लाह हम साथ साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत انجوائے کرنے والی صورت ہے، اور خاص طور پہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تناظر سے دیکھیں گے کہ اللہ کتنے مختلف مراحل سے گزار کر ان کو اپنے کام کا بناتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تم کو سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. ایسے نہیں لگا آپ کو جیسے سورہ یوسف شروع ہو گئی؟ آپ دیکھیں جن صورتوں میں قصے ہوتے ہیں نا پورے، تو ان کا آغاز بغیر کسی پروٹوکول کے ڈائریکٹ بات سے شروع ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اب یہ سننا کس لیے؟ ایمان کے لیے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے. اور آپ کو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے سٹوریز آف پروفٹ سے، قصص الانبیاء. بچوں کو سنایا کریں، ہر ایج کے بچوں کو ان کی ایج کے مطابق کہانیاں بنا کر نبیوں کی سچی کہانیاں سنائیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے وہ بہت فائدہ لیں گے. اب قصہ شروع ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے، فرعون کا لفظ یہاں پولیٹیکل لیڈر کے ناطے سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ سیاسی طور پہ شرک کیسے پھیلتا ہے. اور فرعون کی پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کی. یاد رکھیے کہ جو سیاسی رہنما اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، اپنے کرتوتوں سے لوگوں کی نظریں پھیرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کس بینک میں پیسہ بھیج رہے ہیں اور ہم کیا کھا رہے ہیں، ان کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ دو. فرقہ واریت، شیعہ سنی اختلافات، سندھی مہاجر اختلافات، کشمیری اور غیر کشمیری اختلاف. وہ بھلا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، کسی پہ نہ لیں لیکن آپ کو ایک جنرل اصول بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو ملکوں میں ہنگامے ہوتے ہیں نا، اور بعض دفعہ بوم بلاسٹ ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہائے بیچاری حکومت پہ کتنا بڑا فتنہ پڑ گیا، کیا کریں. وہ خود حکومت نے کرایا ہوتا ہے. وجہ کہ وہ اس دنوں میں وہ خبر گرم کرتے ہیں، لوگ اس میں کھوئے ہوتے ہیں، انہی دنوں میں وہ چپکے سے کھسک کے کہیں کوئی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پریس اور میڈیا کی نظریں ان پہ نہیں آتی. یہ فرعون کی اصول تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، گروہوں میں تقسیم کیا. کلاس سسٹم، یہ اپر کلاس یا لوور کلاس، یہ سسٹم بھی وہ پیدا کرتے ہیں. ایک طبقے کو اتنی مراد دے دیتے ہیں، اتنی رعایات دے دیتے ہیں کہ وہ حکومت کا سیکنڈ ہینڈ بن جاتا ہے. ہوتے وہ گورنمنٹ میں نہیں لیکن سارے رولز ان کے ہی چلتے ہیں. آپ نے سنا جو حکومت آتی ہے وہ جیسی ہوتی ہے، کوئی آتی ہے بزنس مین لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، کوئی آتی ہے تو زمینداروں کو فائدہ دیتی. یہ بات ہے کہ ایک گروہ کو وہ بہت اوپر رکھ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کر دیتا ہے. تھرڈ کلاس بیچارہ لیبر طبقہ مارا تو وہی جاتا ہے. مہنگائی ہوتی ہے تو کون مارا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ملکوں میں مہنگائی ہے تو کسی کو کیا لگے؟ جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس ہیں، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، ان کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے. اگر پہلے آٹا وہ 20 روپے کا لیتے تھے اور اگر 100 کا لینے لگے، ہو کیئرز، ان کا ڈالر بھی تو 60 سے کہاں چلا گیا؟ امیر طبقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی آپ جا کے دیکھیں دل غم سے روتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں جائیں، جتنی مرضی لوڈ شیڈنگ جائے، کچھ گھروں میں آپ جہاں جا کے رہتے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلتا گئی کہ نہیں. وہ کیا کیے؟ وہ بجلی جاتی ہے کنورٹر، کنورٹر نہیں ہے تو یہ جنریٹر ہے، پتہ ہی نہیں. لگژری وہی ہے، کھاتے وہی، پیتے وہی. میں کہتی ہوں ہم تو باہر رہ کے پتہ نہیں کتنا کڑتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم نے دو لائنیں لی ہوئی ہیں، ایک ادھر سے لی ہوئی ایک ادھر سے لی ہے. طبقہ مرتا کون سا سڑکوں پہ رونے والا. یہ ہے فرعون کا اصول. اور یاد رکھیے جہاں سیاست اسلام سے الگ ہوگی، یہ آج کے دور کا ایک شرک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اگر اسلام کا حکومتی سطح پہ نافذ نہیں کیا نا، تو اس کی سزا آج ہر بندہ کما رہا ہے. کہا کہ یہ دوسرے گروہ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں. یہ دیکھیے اللہ کا فیصلہ ہے. جو دبی ہوئی بنی اسرائیل تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر ان کو اقتدار بخشنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان سے فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو ڈر تھا. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات ہوئی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی ساری فرعونیت کے باوجود جو کام کرنا تھا وہ کروا لیا. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی فرعون کے گھر میں بھیجے گئے. کتنے بچے مروائے، موسیٰ کو نہیں مروا سکا. ایک کہاوت ہے اردو زبان میں بھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. فرعون کو ڈر تھا نا موسیٰ کا، تو موسیٰ ان کے گھر میں ہو کے رہا. آج بھی کچھ لوگ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، اب یہ ضرور ہوگا دیکھنا، ہو جاتا ہے. بعض لوگ دین کے نام پہ ایک دوسرے کی مخالفت میں اس طرح کی چڑو خطیاں کرتے ہیں. ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ کام ہوگا، ہو جاتا ہے. भाई अल्लाह ने अपना काम कराना है, आप साथ नहीं देंगे, अल्लाह खुद ही साथ दे देता है। जब वो काम होता कहते हमें पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था इन्होंने ये काम करना है, और हमें ये भी पता था ये बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। तो याद रखिए कि वो रब ही क्या जो फिरौन से डरते हैं, रब मूसा को फिरौन के घर में पैदा कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ लफ्ज़ हामान जो, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये रिलीजियस लीडर का सिंबल है इस सूरत में, मजहबी शख्स था हामान, इनका प्रीस था। लेकिन जब मजहबी तबके के ऊपर दौलत की भूख सवार होती है ना, तो वो लोगों को शिर्क की रंगरलियों में मुबतला करके उनसे नजराने और उनसे चंदे लेते हैं। पिछली आपने अभी प्रेजेंटेशन देख ही ली है, कोई शख्स आपको उन सारी प्रेजेंटेशन में क्लीन शेव दिखा, सूटेड बूटेड, कोई मैन, कोई जिसको आप कहें कि बेदीन शख्स दिखा? हाल हुलिये क्या थे? मैं किसी पे तनकीद नहीं करती, लेकिन हकीकत आपने खुद देखी है। जितने लोग कबरों पे बैठे होते हैं और नजराने और ये सब बाहर देखने में मशरू चेहरे होते हैं, लेकिन याद रखिए हामान भी बहुत मजहबी शख्स था, लेकिन दौलत परस्त था। जब बंदा अल्लाह का सच्चा दीन पेश करता है ना, तो फिर दौलत नहीं मिलती, आई भी चली जाती। लोग कहते हैं हमें ऐसे दीनदारों को सपोर्ट नहीं करना जो कहते हैं सूद हलाल नहीं। चलो आना चंदा तो तुमने हमसे ही लेना है ना, और सूद के खिलाफ बातें करो। दीनदार तबका जब दौलत वालों से डर जाता है, ये तो चंदे बंद कर देंगे। दूसरे लफ्जों में कह लें कि जब दीनदारी दुकानदारी में ढल जाती है ना, तो इंसानियत शिर्क में आती है। मैं पूरे शऊर और यकीन से कह सकती हूँ कि आज हमारे ही अपने मुल्कों में या अपने ही कल्चर में जहाँ हम देखते हैं जितना शिर्क फैल रहा है ना, उसमें 80% के जिम्मेदार दीनदार हजरात है। जब उनको तसलियां देते हैं, नहीं नहीं करो, तुम वहाबियों की बातें ना सुनो, ये तो तुम्हें वहाबी बना देंगे, ये तो तुम्हें पता नहीं क्या बना देंगे। बास लोगों के बारे में यहाँ तक मैंने सुना, मेरे अपने भाई की बात है, ये कुरान अभी मेरे सामने रखा हुआ है, ये वही है जिसको आप लोग आसनुल बयान के नाम पर लेते हैं। तो जब वो उम्रे से आए, हज करके या उम्रे से आए, तो एक तो PIA खुद भी देती है या गवर्नमेंट हुकूमत सबको देती है उनके पास, लेकिन उन्होंने बाकियों के लिए खुद गिफ्ट में खरीदे। कहते कि मैंने 50 रियाल का एक एक कुरान खरीदा कि सब फूफो खाला बहनों को कुरान दे दूंगा। कहते जब जहाज में आया तो उसमें जहाज में उन्होंने हमें फिर ये कुरान दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब कहते मैं उतरने लगा, तो मेरे साथ 2-3 बुजुर्ग थे, बड़े माशाल्लाह हज करके आ रहे थे, तो उनके कुरान भी रखे थे। तो उतरने लगे तो मैंने कहा बुजुर्गों ये कुरान आपका? कहता रहने दो, हमने नहीं लेना, ये वहाबियों का कुरान है। कहते मैंने उन्हें कहा मैं ले लूं? कहता ले लो। कहता मैंने वो भी उठा लिए कि 50 का एक एक लिया था, मैं और 2 लोगों को दे दूं। यानी ये तासुब है कि बाज दफा लोग अल्लाह के घर जाके अलग जमातें करते हैं। आपको पता है ये बात? कई लोग खाना काबा में जाके अपनी जमात अलग करते हैं, कई लोग अरफात के मैदान में, आपको पता है ना कि सुन्नत क्या है, कि जोहर और असर को जमा करके पढ़ते हैं, वो छोड़ के इमाम काबा को पीछे करके अपनी पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह कहता है मजहबी तबके की दीनदारी बड़ी सख्त है। दुआ कीजिए अल्लाह पहले हम सब अपने लिए करें कि दीन के नाम पे सही दीन सीखें। मुझे अल्लाह ये तौफीक ना दे कि मैं आपका दीन भी बिगाड़ दूं, जो पहले भी कुछ था आपका सारा ख़त्म कर दूं। तो हामान का किरदार जहाँ अल्लाह ने दिखा दिया कि किस तरह से लोगों को वो इस तरह से गलत चीज़ों में डाल देते हैं ताकि लोग खुश रहें, वो लोगों की दुनिया बनाते रहते हैं, अपनी बिगड़ जाती है, कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ है। वल्लाही मेरा दिल दुखता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि भोले भाले लोग हैं। मुझे कभी भी बेदीनों पे इतना गुस्सा नहीं आता, नॉन मुस्लिम्स पे तो हमेशा ही हसरत आती है कि अल्लाह हम इन तक पहुंचे, लेकिन जो भी हमारे साथी जो भी दीन से नहीं जुड़े, जो आपको कहीं फिल्मों में काम करते दिखेंगे, कहीं मॉडलिंग करते दिखेंगे, मुझे दुख आता है उन पे, गुस्सा नहीं आता, मैं कहती हूँ अब इन तक पहुंचा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख सदमा उन लोगों पे आता है जो दीन के नाम पे इस तरह की दुकानदारियां बनाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर वही दिखाता है अल्लाह जो होगा, और यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही हुआ था कि बैतुल्ला को उन्होंने एक किस्म का अपना मजहबी इजारादारी कायम कर रखी थी, अल्लाह ने वहां जाल हक का वजाहक अल बातिल करवा दिया। हो गया वो 21 साल के बाद, लेकिन हुआ। याद रखिए दुनिया में आखिरी फतह हक की होगी। आज हमें बातिल परस्ती दिखती है, कहते इतने तो लोग हैं, क्या ये सारे मुशरिक हैं? भाई मुझे और आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया कि वो ही होता है जिसका लोगों को डर होता है। अब यहाँ से मूसा का बचपन, जिसको आप कह लीजिए कि अगर नबी सल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आपका बचपन क्या था, असल में ये जो ऊपर के 2 पैराग्राफ थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा किए जा रहे थे उस दौर के हालात बताए गए हैं। बिल्कुल रही को मखतूम खोलें तो शुरू के 2-3 चैप्टर जो हैं वो अरबों के हालात हैं नबी सल्लम की आमद से पहले के। अब वो बताकर अब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत है।